पृष्ठ संख्या एक, अध्याय एक, गांधी का सत्याग्रह दर्शन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। गांधी के नेतृत्व में पराधीन भारत अपनी चिर राजनीतिक निंद्रा त्याग कर जाग उठा। उनके पूर्वज तथा समकालीन नेताओं की तुलना में उन्हें अभूतपूर्व सफलता मुख्यतः इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि वह जनता के अप्रतिम नेता होते हुए भी बड़ी सरलता से उसके साथ एकाकार हो जाते थे। उनकी जैसी वेशभूषा, उन जैसा आचरण, उन जैसी बोली व शब्दावली, उनके सुपरिचित सांकेतिक चिन्ह एवं रीति रिवाज को अपनाने व अंगीकृत करने वाले अपने समय की उच्चतम कोटि की विदेशी शिक्षा प्राप्त इस राजनीतिक आंदोलनकर्ता तथा समाज सुधारक ने जिस सरलता से अपने आप को जनमानस की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप ढाल लिया, वह अपने आप में एक ऐसा अनूठा प्रयत्न था जिसे सबने सराहा तथा सहर्ष अपनाया। मूलतः इसलिए कांग्रेस की बागडोर गांधी के हाथ में आते ही स्वतंत्रता संग्राम तथा उसकी कार्यप्रणाली में अमूलचूल परिवर्तन हुए। गांधी युग से पहले का राष्ट्रीय नेतृत्व राजनीतिक समस्याओं का संवैधानिक शांतिपूर्ण तथा क्रमिक निराकरण ढूंढ रहा था। फलतः न केवल 1885 से 1905 के 2 दशकों बल्कि 1918 ईस्वी तक के कांग्रेस आंदोलन का प्रभाव वस्तुतः शहरी क्षेत्रों के मध्यम शिक्षित वर्ग के पुरुषों तक ही सीमित था। उस समय के नेताओं ने जिनका कांग्रेस के ऊपर आधिपत्य था, कांग्रेस आंदोलन को भारतीय शासन की त्रुटियां बताने तथा उसमें सुधार लाने के हेतु दलीलों, लेखकों, व्याख्यानों, प्रार्थनाओं तथा आलोचनाओं और बाद में आंशिक दबाव की नीति द्वारा स्वशासन की मांगों को दोहराने तक ही सीमित रखा। उनकी इस अदूरदर्शितापूर्ण रणनीति के परिणाम स्वरूप गांधी युग से पूर्व का कांग्रेस आंदोलन अपने व्यवहारिक रूप में कभी जन आंदोलन नहीं बन सका। पृष्ठ संख्या 2। गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश से पूर्व के भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था अत्यंत दयनीय थी। मुख्यतः गांधी के आह्वान पर प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की। क्रांतिकारियों को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिज्ञों तथा दलों ने दिल खोलकर ब्रिटेन की विजय के लिए युद्ध में भाग लिया। विश्व युद्ध आरंभ होते ही कॉमन सभा में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने घोषणा की कि ब्रिटिश नीति का लक्ष्य भारत में क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एक स्मिथ ने स्पष्ट शब्दों के कहा था कि भविष्य में हमें भारत की समस्या को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। उनके उत्तराधिकारी लॉयड जॉर्ज ने घोषणा की कि आत्मनिर्णय के जिस सिद्धांत के लिए हम लड़ रहे हैं उसे भारत जैसे प्राच्य देशों पर भी लागू करना पड़ेगा। 1916 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत में गवर्नर जनरल एवं वायसराय बनकर आए। उन्होंने पद संभालते ही यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासन की स्थापना करना है। किंतु युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार अपने वायदे से पीछे हट गई, जिससे वास्तव में भारतीयों को घोर निराशा हुई। युद्ध के बाद सरकार ने जो शासन सुधार की नीति अपनाई उससे भी भारतीयों को निराशा ही हुई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना देश की राष्ट्रीय जागृति के अनुकूल नहीं थी। फलतः जनता पुनः अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने के लिए उतावली हो उठी। ऐसे समय में गांधी ही तो थे जिन्होंने जनता का मार्गदर्शन किया। भारतीय समाज में सांप्रदायिकता का विकास धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा था, क्योंकि भारतीय इतिहास में पहली बार 1909 के मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व देकर ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी तौर पर सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया। अंग्रेजों के उकसाने तथा उनकी मिलीभगत से ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अवरुद्ध करने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना शुरू कर व्याप्त वैमनस्य को अपने राजनीतिक हित के लिए भड़काया, जिससे भारतीय समाज को अस्त व्यस्त किया जा सके तथा उसके ओझल मानसिक बंटवारे को अस्थायी राजनीतिक बंटवारे में परिवर्तित किया जा सके। इस परिप्रेक्ष्य में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न एक ऐसी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया, जिसका अस्थायी समाधान खोजना गांधी की प्राथमिकता बन गया। पृष्ठ संख्या 3। भारत की आर्थिक स्थिति प्रथम विश्व युद्ध में और भी अधिक दयनीय हो गई थी। इस आर्थिक दुर्दशा के लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी थी। युद्ध के समय भारतीय सेना का सब खर्च भारत सरकार के सिर पर डाल दिया गया। खर्च को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत अधिक कर्ज लिया और ऐसी मुद्रा नीति अपनाई जिसके कारण अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गई। निम्न एवं मध्यम वर्ग के लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया। भुखमरी की नौबत आ गई, साथ ही साथ अकाल, प्लेग, इन्फ्लुएंजा आदि का भी प्रकोप हुआ। इन कारणों से जनता की बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ऐसी प्रतिकूल परिप्रेक्ष्य में गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम को जन जन तक पहुंचाया और भारत की जनता को कांग्रेस के झंडे के नीचे एकत्रित किया। गांधी के आंदोलन ने सर्वसाधारण के देशव्यापी आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। सत्य व अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, अहिंसक असहयोग तथा कर नाफरमानी गांधी के अहिंसक सत्याग्रह के प्रमुख आक्रामक साधनों के रूप में जनता के सामने आए। 1919 से 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर छाए रहे। इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी ने नेतृत्व को चुनौती देने वाले कई समूहों व संगठनों ने सिर उठाया। इनमें प्रमुख थे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, क्रांतिकारी आतंकवादी तथा साम्यवादी आंदोलन। कांग्रेस में भी गांधी के ढेर सारे आलोचक थे, किंतु राष्ट्रीय आंदोलन पर गांधी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उनके समस्त आलोचकों और विरोधियों को निस्तेज होना पड़ा। इसका प्रमुख कारण था जनता की गांधी, उनके दर्शन व रणनीति के प्रति असीम आस्था व आकर्षण। गांधी ने सत्याग्रह का आविष्कार व प्रयोग दक्षिण अफ्रीका के भारतीय एवं एशियावासियों के आधारभूत अधिकारों की लड़ाई के लिए एक सशक्त रणनीति के रूप में किया था।